नहीं तो वो क्यों हमें फोन करेंगे? ठहरो जीजी, अभी हम खुद ही देख लेते हैं कौन हमारी जीजी को इतना याद कर रहा है। आहाना की किसी बहन ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। आहाना के हाथ से फोन ले लिया गया। बेचारी आहाना रोकती रही, पर बात उसके हाथ से निकल चुकी थी, चोरी पकड़ी जा चुकी थी। आहाना ने बेबसी और मायूसी से अपनी आंखें भींच ली। वो खुद पर टिकी सबकी निगाहों को महसूस कर पा रही थी और संकोच से जमीन में गड़ गईं। भाभी देखो तो, अक्षय जी का फोन है, कौन है ये? एक ने नाटकीय अंदाज में सवाल किया। बदले में भाभी ने शरारत से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे तुम अक्षय जी को नहीं जानती? वही तो है हमारी अनु के होने वाले पियाजी। उन्होंने ही तो हमारी अनु को पसंद किया है और अब ब्याह कर हमारी अनु को हम सबसे दूर लेकर जाने वाले हैं। ओहो, तो अक्षय जी हमारी प्यारी जीजा जी का नाम है? हाँ, उन्हीं का तो नाम है। पर जिज्जी तो कह रही थी कि जीजा जी का फोन नहीं, फिर उनके नाम से और किसका नंबर सेव किया हुआ है जिज्जी? जाने आपस में बात कर रहे थे या जानकर आहाना को अक्षय का नाम लेकर सता रहे थे। अपनी चचेरी बहन के इस सवाल पर आहाना ने कातर नजरों से उसे देखा। इतने में दूसरी बहन फट से बोल पड़ी, अरे इतना सोचती काहे है, फोन उठा ले, खुद ही पता चल जाएगा। जे सही बात बोली तू, पहली लड़की ने हामी भरी। जैसे ही कॉल रिसीव करने लगी फोन कट गया। आहाना की जान हलक में अटक गई थी। फोन कटने पर उसने अभी चैन की सांस भी नहीं ली थी कि फोन फिर से बज उठा। आहाना ने अब की बार लपक कर अपना फोन छीन लिया। इधर दो तुम हमारा फोन। अरे जिज्जी, पहले हमें देखने तो दो कि कौन फोन कर रहा है जीजा के नाम से। उस लड़की ने तुरंत ही हाथ पीछे किया, जिससे आहाना फोन लेने में चूक गई। पीछे से भाभी ने झट से फोन ले लिया और शैतानी मुस्कान लबों पर सजाते हुए बोली, अनु फोन चाहिए तो जरा सच सच बताओ कि कौन फोन कर रहा है तुमको इस वक्त। अरे भाभी समझा करो ना, अक्षय जी का नाम लिखा है और बात करने को हमारी बन्नो रानी बेताब है, इसका तो एक ही मतलब निकलता है, हमारी अनु के उनका ही फोन आ रहा था। अब बिचारी को फोन दे भी दो, देखो तो सही अपने पियाजी से बात करने को कितनी बेकरार है। मौका पाकर पल्लवी ने भी बहती गंगा में हाथ धो ही लिया था। आहाना की पलकें शर्म से झुक गईं और हया की लाली उसके गोरे गालों पर बिखर गई। भाभी फोन दे दीजिए ना प्लीज, आहाना ने विनम्रता से अनुरोध किया, जिसे सुनकर भाभी उसकी हालत पर तरस खाते हुए उसे फोन देने लगी थी कि दूसरी बहन ने झट से बीच से ही फोन उड़ा लिया और कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोली, ठहरो ठहरो जीजी, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले जरा हम तो बात कर लें हमारे होने वाले जीजा जी से, फिर तुम बात करना। आहाना परेशान निगाहों से बेचारगी से उसे देखने लगी। सबको यूं अपनी जीजी को सताते देखकर अंतरा को आहाना पर तरस आ ही करा। उसने तुरंत ही उस लड़की से फोन छीना और आंखें दिखाते हुए बोली, तुम काहे बात करोगी, जीजू का फोन जीजी के लिए आया है तो वही करेंगी। लो जीजी, जाकर जीजू से बात करो और खबरदार जो अब कोई हमारी जीजी को तंग किया तो हमसे बुरा कोई ना होगा। अंतरा ने फोन आहाना को देकर बात करने को कहा और लगे हाथ बाकी सबको चेतावनी भरी नजरों से घूरते हुए धमकी भी दे डाली। अंतरा का ये रूप देखकर बाकी सब अपनी शरारत छोड़कर शरीफ बच्चे बनकर बैठ गए और आहाना तुरंत ही फोन लेकर बालकनी में भाग गई। हेलो, आहाना ने धड़कते दिल के साथ फोन उठाया। जैसे ही कानों में अक्षय की ठहरी हुई आवाज पड़ी, उसकी धड़कनें पल भर को थम गई। हेलो आहाना जी, आहाना की जुबान पल भर को लड़खड़ा गई। अगले ही पल दूसरी तरफ से अक्षय की चिंता भरी आवाज आई, आहाना आप ठीक हैं? जी जी हम बिल्कुल ठीक हैं, आप बताइए कैसे फोन किया आपने? आहाना ने संभलते हुए जवाब दिया और साथ ही फोन करने की वजह भी पूछ ली। आखिर इसी फोन के कारण तो अंदर सबने मिलकर उसकी इतनी टांग खींची थी, वजह जानना जरूरी था। कोई खास वजह नहीं, बस यूं ही दिल किया आपसे बात करने का और मौका भी था तो फोन मिला दिया। क्यों, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया क्या? नहीं, वो बस, आहाना ने हड़बड़ी में इतना कहा, फिर बोलते बोलते ठहर गई और कुछ पल बाद उसने आगे कहना शुरू किया, कुछ नहीं, आप कहिए क्या बात करनी थी आपको हमसे? बातें तो मुझे आपसे बहुत करनी है, पर शायद अभी उसके लिए सही वक्त नहीं आया है, तो अभी आप मुझे इतना ही बता दीजिए कि अब बस 4 दिन बचे हैं हमारी शादी में, उसके बाद आप हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएंगी और मैं पूरे हक से आपको अपना कह सकूंगा। कैसा लग रहा है आपको हमें? आहाना ने हैरानी से आंखों की पुतलियों को फैलाते हुए सवाल किया। दूसरी तरफ से अक्षय ने तुरंत ही हामी भरी, आपको कैसा लग रहा है? आहाना ने सवाल का रुख मोड़ा और अक्षय के दिल के हाल को जानने की कोशिश की। अक्षय ने तो उसका सवाल सुनते ही बेझिझक अपनी भावनाओं को उसके सामने जाहिर कर दिया। मैं तो बहुत खुश हूँ, उससे कहीं गुना ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि अब फाइनली हमारे बीच की इन दूरियों का अंत होगा और आप अपनी अर्धांगिनी बनकर मेरी जिंदगी में शामिल हो जाएंगी। मुझे तो उस पल का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है जब आप दुल्हन बनकर मेरे सामने आएंगी और हम शादी के अटूट बंधन में बंध जाएंगे। पर इन सब के बावजूद थोड़ी सी नर्वसनेस भी है, मन में कई उलझने भी हैं, जैसे मैं एक अच्छा हमसफर साबित हो सकूंगा या नहीं, आपकी जिम्मेदारी उठा पाऊंगा या नहीं, इस रिश्ते को ठीक से निभा पाऊंगा या नहीं, आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सकूंगा या नहीं। आप पति और हमसफर कैसे साबित होंगे ये तो हम नहीं जानते, पर जितना हमने आपको जाना है आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि एक अच्छा और जिम्मेदार पति भी बन सकूं। अक्षय के जवाब पर आहाना चुप्पी साध गई, शायद समझ नहीं सके कि जवाब में उसे क्या कहना चाहिए।
पल भर की खामोशी के बाद अक्षय ने ही चुप्पी तोड़ते हुए सवाल किया, आहाना आपने बताया नहीं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है?
हमें नहीं पता कि हमें कैसा महसूस हो रहा है और हमें आपसे क्या कहना चाहिए। आप खुश हैं, उत्सुक हैं, क्योंकि शादी के बाद हम आपके हो जाएंगे। हम भी खुश होना चाहते हैं पर नहीं हो पा रहे। दुखी हैं पर दुख जाहिर नहीं कर पा रहे।
अभी हमारी स्थिति उस बछड़े जैसी है जिसे बहुत जल्दी उसकी माँ, बाप, भाई बहन परिवार से जुदा करके दूसरे ग्वाले को सौंप दिया जाएगा। वो बछड़ा नहीं जानता कि वो नई जिंदगी उसके लिए कैसी होगी, वो ग्वाला उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा। उसका भविष्य शायद सुखमय हो पर अपने परिवार से बिछड़ने का दुख उस सुख से कहीं गुना ज्यादा है। शायद आप हमारी मनोदशा नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हम खुद ठीक से कुछ समझ नहीं पा रहे, इसलिए इस सवाल को रहने दीजिए।
आहाना ने बुझे स्वर में अक्षय को जवाब दिया। उसके शब्दों में उसका दुख और उदासी साफ छलक रहे थे जिसे महसूस करते हुए अक्षय की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसे अब एहसास हुआ कि वो तो बस अपनी खुशी देख रहा था। इस वक्त आहाना पर क्या गुजर रही होगी, इस पर तो उसने ध्यान ही नहीं दिया होगा। खुद भविष्य के सुनहरे सपने सजा रहा था पर इस ओर तो ध्यान ही नहीं दिया कि उन सपनों को साकार रूप देने के लिए आहाना को अपना घर, परिवार, दोस्त, शहर सब छोड़कर आना होगा, और आखिर आसान तो नहीं था ये उसके लिए। अक्षय कुछ पल तो कुछ कहने की हिम्मत न कर सका। शायद पछतावा था कि अपनी खुशी में उसके गम और तकलीफ को नजरअंदाज कर दिया था। फिर उसने बात बदलते हुए सवाल किया, आहाना आपने मेरी दी हुई डायरी में कुछ लिखा या वो अब भी कोरी ही है?
आहाना जो बोलते हुए भावुक हो गई थी उसने खुद को संभालते हुए इनकार में सिर हिला दिया, अभी नहीं लिखा कुछ पर भविष्य में जरूर लिखेंगे और उसमें कुछ खास ही लिखेंगे।
लिखने के बाद मुझे पढ़वाएंगी?
पता नहीं, वो तो जब लिखेंगे तभी बता सकेंगे कि वो बात आपको पढ़वा सकते हैं या नहीं।
अभी से कैसे बता दें?
ये बात भी ठीक है। इसके बाद कुछ पल उनके बीच खामोशी पसरी रही। फिर आहाना ने सकुचाते हुए कहा, अक्षय जी हम अब आपसे बात नहीं कर सकेंगे।
क्यों? अक्षय उसकी बात सुनकर चौंक जरा।